بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن عدو الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مسائل فقہ میں ہماری گفتگو روزے کے فدیے اور روزے کے کفارے کے ذیل میں چل رہی تھی، اور ایک مسئلہ جس کا ہم نے آپ سے ایک اخلاقی وعدہ کیا کہ وعدہ کیا تھا کہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے، یعنی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بچپنے میں ہم نے مثلا روزہ چھوڑ دیا بچپنے میں، اور لاعلمی کی وجہ سے روزہ چھوڑا، بالخصوص خواتین یہ سوال کرتی ہیں اپنے بچپنے کے بارے میں، کیونکہ بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر تکلیف شرعی لڑکوں کی نسبت پہلے آ جاتی ہے، یعنی 9 سال قمری ہجری، اردو والے قمری ہجری، اردو تو بہرحال صحیح نہیں ہے لیکن اسلامی جو بھی اس کو تعبیر کریں، 9 سال مکمل ہونے کے بعد 10ویں سال کا پہلا دن ایک بچی बालिग हो जाती है। अच्छा, आजकल ये एक अवेयरनेस और एक इत्तिलात उमूमी और शरीयत से निस्बतन ज़्यादा वाकिफियत जो आजकल पैदा हुई है, तो शायद आम तौर पर बिलखुसूस वो घराने के जो दर्स और दुरूस से किसी तरह से भी मुत्तसिल और कांटेक्ट में हैं, वो इन मसाइल से भी आगाह हैं और शरीयत के भी पाबंद हैं और शरीयत को भी फॉलो करते हैं एक हद तक। यानी एक हद तक एक मजमू लिहाज से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, वरना ज़ाहिर है बाज़ घराने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा दीनदार और अपने लिहाज से पूरी शरीयत पर अमल करने की कोशिश की जाती है, कि ये वाकान कि इंशाल्लाह जब हम तवज्जो कीजिएगा कि जब हम आज से इंशाल्लाह सहीफ़े सज्जादिया की गुफ्तगु को शुरू करेंगे, कि जो उस कल के नकल के मुताबिक इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खसूसी सिफारिश सहीफ़े सज्जादिया के लिए खसूसी एक खसूसी सिफारिश है, इसको मुताला करने के बारे में, तो खुदावंद मुताल का एहसान है कि खुदावंद मुताल ने हमें सही रास्ते की हिदायत दी, सही रास्ते की हिदायत दी। और वाकान यानी इंसान तसव्वुर करें हमारा क्या कमाल है, यानी आज हम जहां खड़े हैं दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से छोड़ दें, अगरचे दुनियावी एतबार से भी सेम यही हाल है, इंसान क्या तसव्वुर करता है कि मैं इसका मुस्तहिक हूं, आया मेरे एफर्ट्स से मैं यहां तक पहुंचा हूं। यकीनी तौर पर खुदावंद मुताल की तौफीकात, खुदावंद मुताल की हिदायत और खुदावंद मुताल की इनायतों के बाद इंसान के एफर्ट्स होते हैं जो इंसान को खुदा का कुर्ब और दीन हक और सही रास्ते पर अमल करने को इंसान इंतखाब करता है, और इंसान अपनी मर्जी से तभी उसको सवाब दिया जाता है, अजर दिया जाता है। लेकिन खुदाबंद मुताल ने ऐसे अजबाब मुहैया किए, ऐसे अजबाब मुहैया किए कि हम बाज़ों का देखते हैं कि बाज़ लोगों को वो अजबाब मुहैया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मसलन ये दरबार मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है पूरा साल दर्स व दुरूस को मुनाकिद करना और मोमिन और मोमिनात को उसको सुनने की तौफीक हासिल होना, ये वाकान खुदावंद मुताल का एक करम है, खुदावंद मुताल का एक लुत्फ है। वरना हम भी दुनिया के लोगों की तरह इधर उधर भटक रहे होते हैं। अला ये हाल, ये वाकान महीना शुक्र का महीना है, वैसे ही इंसान पूरा महीना पूरी जिंदगी हर नमाज के बाद हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करने वाला हो, लेकिन खुसूसी तौर पर इस माह मुबारक और माह रहमत और माह मगफिरत में खुदा की खुसूसी खुदा का खुसूसी शुक्र अदा करें, खुदा का खुसूसी शुक्र अदा करें, खुदा हमें तौफीक दे। और वाकान खुदा की तमाम नेमतों पे हम खुदा की हम्द करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हालिन। तो ये बहरहाल खुदावंद मुताल ने हमारे लिए ये असबाब मुहैया किए कि हम खुद ब खुद चलते 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 उस हिदायत के, खुदावंद मुताल की हिदायत के दोष पर चलते चलते हम यहां तक बैठे हैं, यहां तक पहुंचे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र खुदा और जिक्र अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम करने और सुनने का मौका मिलता है, ये वाकई खुदा की हम्द है, खुदा का शुक्र है। बस बहुत सारे मोमिनीन मसाइल से आगाह हैं और वैसे भी ओवरऑल जनरली तौर पर उमूमी तौर पर एक दीन और शरीयत से आगाह ही है, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि खवातीन कि बचपन में अवेयरनेस नहीं थी, नहीं मालूम था, जाहिर है वो अब ये जो भी इसके असबाब हैं दुनियावी असबाब उसके लिहाज से इतनी अवेयरनेस वगैरह नहीं थी। आज इस इंटरनेट और सोशल मीडिया और इन चीज़ों के जरिए से कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने मुताल हमारे लिए हिदायत के रास्तों को मजीद आसान कर दिया। जहां आजमाइश में इजाफा हुआ, अब ये बात याद रहे, जहां आजमाइश में इजाफा हुआ, जहां फितना और फसाद में इजाफा हुआ, वहां हिदायत के लिए भी हमारे लिए रास्ते ज्यादा उसके रिसोर्सेज आसान हो गए। अला ये हाल कफारा वाजिब होता है जब इंसान मुब्तिलाते रोजा को अंजाम दे। मुब्तिलाते रोजा अब चंद मैं आपकी खिदमत में बयान कर दूं, खाना पीना के आम तौर पर रोजा यही खाना पीना ही तसव्वुर होता है, लेकिन मुनहसर नहीं है खाने पीने में, लेकिन खाना पीना जिमा इस्तिमना गुस्ल जनाबत या खवातीन के बाद गुस्ल जो वाजिब हो जाए और इंसान उसको अंजाम ना दे, उसको अंजाम ना दे तो कफारा वाजिब होता है। आगे सिस्तानी के लिहाज से ये जो मैंने शुमार की है कफारा इनमें ही वाजिब है, अगर इंसान इसको अंजाम देता है तो कफारा इसमें वाजिब है, कह करने से आगे सिस्तानी के नजदीक कफारा वाजिब नहीं है। इसी तरह खुदा रसूल और आयमा अथार अली मुस्लिम पर झूठ बांधना, आगे खुई और मशहूर फोकहा आओ खुमैनी और आओ खुई वगैरह कहते हैं नहीं उसको भी अंजाम देने से कफारा वाजिब है, लेकिन ज़ाहिरन आओ खुमैनी भी कहते हैं, ज़ाहिरन मैं मुतमईन नहीं हूं लेकिन मेरा ख्याल है कि आओ खुमैनी भी यही फरमाते हैं कि जिस तरह आओ खुई के तमाम मुब्तिलाते रोजा को अंजाम देना मूजिब कफारा है, कफारा वाजिब है। लेकिन आगे सिस्तानी यही जो मैंने आपके सामने शुमार किए इसी में फकत कफारा है। अच्छा आदमी जब जाहिर रोजा नहीं रखता है तो बुनियादी तौर पर वो खाना ही खा रहा होता है या पानी ही पी रहा होता है। खूब अब दो चीजें हैं, एक दफा रोजे का बातिल होना, एक दफा कफारा आना, ये दो अलग अलग गुफ्तगू है। रोजे का बातिल होना तो बहुत सारी चीजों से हो सकता है लेकिन मुमकिन है कफारा ना हो, जैसे आगे सीस्तानी के लिहाज से जैसे तय करना, जानबूझकर तय करना, खुदा रसूल और आयमा अथार अलैहिस्सलाम की निस्बत झूठी बात मंसूब करना, रोजा बातिल हो जाएगा। रोजा बातिल हो गया इज इक्वल टू यह है कि माह मुबारक रमजान के बाद इंसान इस रोजे की कजा करे, इस रोजे की कजा करे, यह है रोजा बातिल होने की डेफिनेशन और रोजा बातिल होने का माना। तवज्जो फरमाए आपने, रोजा बातिल होना एक अलग चीज है और कफारा होना अलग चीज है। रोजा बातिल होने की मैं दो एग्जाम्पल दे दूं जो बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा से मुराद ये है कि हर साल चार पांच या शायद ज्यादा अफराद ये सवाल जरूर पूछते हैं, कम हो ज्यादा हर साल को भी कम और ज्यादा में डाल दें और लोगों में भी कम और ज्यादा में डाल दें। एक अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं कि ये दो बड़े बड़ी अहम इंपॉर्टेंट मिसाल दे रहा हूं जो प्रैक्टिकल मिसाल है। एक ये है कि इंसान ये समझते हुए कि इफ्तार का टाइम हो गया और भूल से कोई चीज खा ले, जब भूल से लफ्ज गलत है, इस ख्याल से कि इफ्तार का टाइम हो गया उसने कोई मतलब रोजा खोल लिया और बाद में पता चला कि मैंने तो इफ्तार से पहले रोजा खोल लिया या टाइम होने से पहले रोजा खोल लिया, तो यहां पर कफारा वाजिब नहीं क्योंकि जानबूझ के तो नहीं खाया, लेकिन ये रोजा बातिल हो गया, ये रोजा बातिल हो गया, फिकही लिहाज से रोजा बातिल है। रोजे की बरकतें हासिल हो गई होगी इंशाल्लाह, माह मुबारक रमजान की बरकतें हासिल हो गई होगी इंशाल्लाह, और जो भी इसके फजाइल हैं वो इंशाल्लाह अजीज हासिल हो गए होंगे, लेकिन फिकही लिहाज से माह मुबारक रमजान के बाद इस रोजे की कजा करनी पड़ेगी। अच्छा, हमने किसी जगह पर ये जवाब दिया तो किसी ने पलट कर सवाल किया कि गलती से खाने पर तो रोजा बातिल नहीं होता है, तो दो अलग अलग बहसें हैं, दो अलग अलग बातें हैं। गलती से खा लेना, भूल से खा लेना, वो एक अलग मैटर है। भूल से खा लेना, गलती से खा लेने का मतलब ये कि मैं मुतवज्जे नहीं हूं कि मैं रोजे से हूं, मुतवज्जे नहीं हूं रोजे से हूं। मसलन दोपहर 12 बजे सख्त प्यास लग रही थी, पानी पी लिया, फिर याद है वो आज तो मेरा रोजा था। कि ये खुशकिस्मत अफराद को नसीब होती है ये नेमत इलाही, और रोजा बिल्कुल सही है क्योंकि भूल कर खाया है। इसको कहते हैं भूल जाना। क्या भूल जाना? कि मैं रोजे से हूं, इसको भूल जाना। लेकिन जो मगरिब के करीब भूल कर, गलती से भूल कर नहीं, गलती से वक्त से पहले खा लेता है, तो गलती से अगर वो वक्त से पहले खा ले तो ये भूल कर नहीं खाया, मुतवज्जे कि मैं दस्तरखान पे बैठा है, खजूर खा रहा है, दुआ पढ़ी उसने, अल्लाहुम्मा लका सुंदो वाला रिस्के का अफतर तो वाली का तवक्कल, तो दुआ पढ़ी उसने, लेकिन जो है वो खा लिया, समझ जाता कि टाइम हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि वक्त से पहले खा लिया। यहां पर एक मसला, अब मसले से मसला, एक मसला फिर एक हद तक शायद जरूरी या बहरहाल काम का मसला है, लेकिन इस मसले पर अमल ना करें। क्यों? उसकी वजाहत कर रहा हूं कि रोजा इफ्तार करने का टाइम क्या है, रोजा इफ्तार करने का टाइम क्या है, रोजा इफ्तार करने का टाइम मगरिब शरई है। मगरिब शरई की डेफिनेशन क्या है? मगरिब शरई की डेफिनेशन क्या है? देखिए, हम बाज औकात हम शिया ऐसी चीजों में मुनाजरा करते हैं, अवामी मुनाजरा, उलमा का मुनाजरा नहीं, उलमा का मुनाजरा इल्मी मुनाजरा होता है, अवामी मुनाजरा, ऐसी चीजों में हम अवामी मुनाजरा करते हैं कि जो मुनाजरे का मैदान नहीं है। मसलन यही कि नमाज मगरिब का टाइम कब होता है, नमाज मगरिब का टाइम कब होता है, ये अवामी मुनाजरा है। नहीं, बाकायदा एक साहब हमें दलील भी दे रहे हैं इसकी कि जब ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटर वाले को रोका और कहा कि तुम्हारी हेडलाइट नहीं खुली हुई है, चालान होगा, गुरूब आफ्ताब हो चुका है और शियों की अजान नहीं हुई है, तो उसने कहा कि अभी तो उजाला है। ये मुनाजरे का अंदाज है। बस पता चला कि लाइसेंस इस पे चालान ही कटेगा क्योंकि अभी रात नहीं हुई है। जब रात नहीं हुई तो इफ्तार किस तरह होगा, मगरिब का टाइम कैसे होगा? खुदारा दीन के साथ मसखरा ना करें। हम हमारे खुद उलमा के दरमियान रिवायात मौजूद हैं, एक बहस है, एक गुफ्तगू है, एक डिबेट है कि मगरिब शरी का टाइम कब होता है। आया गुरूब आफ्ताब सनसेट के बाद वो जो एक सुर्खी निकलती है मशरिक से और वो सर से गुजर जाए, जिसको हम जिस पर हम आम तौर पर इफ्तार करते हैं मगरिब शरी, आया उस पर मगरिब का टाइम होता है या गुरूब आफ्ताब पर मगरिब का टाइम होता है, ये गुफ्तगू है। और आ गए खुई, आ गए सीस्तानी, ये दोनों एहतियात वाजिब लगाते हैं, दोनों एहतियात वाजिब लगाते हैं। क्या एहतियात वाजिब लगाते हैं? कि गुरूब आफ्ताब सनसेट के ऊपर मगरिब का टाइम नहीं होता है, एहतियात वाजिब है। लेकिन चूंकि एहतियात वाजिब है, लिहाजा इस मसले में, जो मसला मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा था कि अगर कोई 2-4 मिनट पहले अगर इफ्तार कर ले तो उसने एहतियात वाजिब की मुखालिफत की, और एहतियात वाजिब में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप सेकंड नंबर के मुज्तहिद की तरफ रुजू कर सकते हैं। आगे सीस्तानी क्या फरमाते हैं? आगे सीस्तानी फरमाते हैं, आगे सीस्तानी और आखोई दोनों का सेम है, अगर आगे सीस्तानी ने इस बात की तसरी की है कि अहले सुन्नत की अजान पर अगर आपको यकीन नहीं है कि सन सेट हो चुका है, गुरूब आफ्ताब हो चुका है, फिलहाल इंतजार करें। आप कितना इंतजार करें? इतना इंतजार करें कि सुर्खी आपके सर से जाहिर हो जाए, यानी वही मगरिब शरी जो हम शिया जिस पर नमाज पढ़ते हैं, इतना इंतजार करें। फतवा है कब? जब आपको यह डाउट हो जाए कि आया सनसेट हुआ या नहीं हुआ है, और अगर यकीन है 100%, अगर यकीन है 100% कि सनसेट हो गया है, तो फिर एहतियात वाजिब यह है कि इस पर न इफ्तार किया जाए न मगरिब की नमाज पढ़ी जाए। एहतियात वाजिब है। अब कभी इंसान अगर यह गलती कर बैठे और मगरिब से पहले भूल कर इफ्तार कर ले तो वो रुजू कर सकता है। वैसे वैसे तो मुस्तहब है कि इंसान नमाज मगरिब और इशा के बाद इफ्तार करे, नमाज मगरिब और इशा के बाद इफ्तार करे। और मगरिब और इशा के बाद का इफ्तार करने का मकसद क्या है? ना ये कि जल्दी मगरिब पढ़ ली, जल्दी इशा पढ़ ली और इफ्तार कर लें, नहीं। यहां पर दो मुस्तहब के दरमियान टकराव है, और आगे शीशानी से इस्तफ्ता कीजिएगा कि कौन सा ज्यादा अहमियत का हामिल है। हम अपना जाहिरी ख्याल भी बयान कर देंगे, लेकिन आगे सीस्तानी आपकी नजर नहीं बयान करेंगे, लेकिन जो हमारा ख्याल है वो बयान कर देंगे कि एक तरफ इशा की फजीलत का वक्त अभी शुरू नहीं हुआ है। इशा की फजीलत का वक्त अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स के बाद शुरू होगा, 40 to 40 मिनट्स के बाद इशा की फजीलत का वक्त, इशा का टाइम शुरू हो गया है, इशा का टाइम शुरू हो गया, लेकिन फजीलत का वक्त थोड़ा ताखीर से है। अब दूसरी तरफ हमारे पास बस इस मुस्तहब का तकाजा यह है कि इशा कितने बजे पढ़े? 40 से 45 मिनट के बाद मगरिब की अजान के। दूसरी तरफ हमारे पास मुस्तहब क्या है? कि मगरिब और इशा पढ़ने के बाद इफ्तार करें, और रिवायत का जुमला है ताकि तुम्हारी नमाज रोजेदार की नमाज बन जाए, ताकि तुम्हारी नमाज रोजेदार की नमाज बन जाए। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि आप नमाज मगरिब पढ़ें, ताकीबात पढ़ें, इंतजार करें, कुरान की तिलावत करें, इशा पढ़ें इशा की फजीलत के वक्त, और फिर इफ्तार करें। हाँ, अगर कोई इंतजार कर रहा है तो वो खुशकिस्मती उसकी कहूं या क्या कहूं, अगर कोई इंतजार कर रहा है तो मुस्तहब है कि اتنی تاخیر کر دیں کہ اس کی فضیلت کی نماز لیٹ نہ ہو جائے اور جا کے اس کے ساتھ افطار کر دیں. اگر کوئی افطار کو انتظار کرنے والا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اصل مستحب یہ ہے. اب سوال یہ کہ اگر ان دو مستحب کے درمیان ہمیں ٹکرانا ہے کہ دونوں نمازوں کو میں لوں یا عشاء کی فضیلت کو لوں، دونوں نمازوں کو روزے کی حالت میں پڑھوں یا عشاء کی فضیلت کو لوں، تو بعید نہیں ہے جس طرح روایت صحیحہ ظاہراً بلکہ موجود ہے کہ عشاء کی فضیلت کی امپورٹنس زیادہ ہے، عشاء کی فضیلت کی امپورٹنس زیادہ ہے. بہرحال اب یہاں پر کل جو مجھے مسائل بیان کرنے اس کی میں فہرست بیان کر دیتا ہوں، ٹائم آج میں نے بہت زیادہ لے لیا، اگرچہ اخلاقی گفتگو بھی ہم نے تھوڑی بہت اس میں کور کی ہے. کہ کل دوسرا پوائنٹ ہم بیان کریں گے کہ جہاں پر صرف قضا واجب ہے، اذان فجر میں جب انسان صبح کی وقت کی غلطی کرے، اور کہاں پر قضا ہے کہاں پر کفارہ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو اگرچہ ہم نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ انشاءاللہ العزیز، وعدہ سے مراد نہ کہ کوئی وعدہ شرعی ہے، لیکن ایک وعدہ اخلاقی تھا، وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز آنے والی گفتگو میں، کہ دعا جو ماہ مبارک رمضان میں ایک جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں دعا کو ترک نہ کرے، ویسے بھی کسی حال میں دعا کو ترک نہ کرے، لیکن خصوصی طور پر ماہ مبارک رمضان میں، اور اس سے زیادہ اخص اور زیادہ خصوصیت واجب نمازوں کے بعد، واجب نمازوں کے بعد انسان دعاؤں کو فراموش نہ کرے، اپنی حاجتوں کو خدا سے طلب کرے. اچھا الحمدللہ ماہ مبارک رمضان میں ایک ٹرینڈ بھی ہے اور اچھا ٹرینڈ ہے کہ بعض دعائیں جو ماہ مبارک رمضان میں نماز کے بعد انسان پڑھنے کی عادت رکھتا ہے، یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم، یا اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، یا اس کے علاوہ اور دعائیں کہ جس میں حج اور باقی چیزوں کو خدا سے طلب کیا گیا ہے، تو ایک حد تک مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن یہ ایک حد تک ہے. کیونکہ ہماری پرابلم کیا ہے، ہماری پرابلم یہ کہ جب ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دعا کا معنی تو نہیں پتا ہے، ہمیں دعا کی عظمت، دعا کی امپورٹنس، یعنی ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں وہ کیا خزانہ ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، متاسفانہ ہم غافل ہوتے ہیں. اور چاہے اس کا معنی پڑھ جاننے والے ہوں چاہے اس کا معنی جاننے والے نہ ہوں، کیونکہ وہ اپنی روٹین کے مطابق یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، اور یہ جو دعا پڑھ رہا ہے انسان ان کے معنی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے. دعا انسان توجہ کے ساتھ چاہے مختصر دعا کرے، اور انشاءاللہ اس سے متعلق ہماری گفتگو رہے گی. اگرچہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک روایت اس ذیل میں بیان کی تھی، لیکن انشاءاللہ چند پوائنٹس، چند سوالات جو میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے کہ دعا کے وقت ہاتھوں کو کیوں بلند کریں، دعا کو زبان سے کیوں ادا کریں، واجب نماز کے بعد دعا کیوں کریں، یہ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. صحیفہ سجادیہ، سلام اللہ علیہ، اور ماہ مبارک رمضان کہ فی الحال ہم اب یہ تو خدا کی مرضی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے میرے اختیار میں تو کم از کم نہیں ہے، ممکن ہے ایک عام مقرر کے اختیار میں ہو، میرے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن باقی ایک خدا کی مرضی ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں دو اہم دعائیں جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے، ایک امام سجاد علیہ السلام کی وہ دعا کہ جو ماہ مبارک رمضان جب داخل ہوتا تھا تو آپ یہ دعا تلاوت فرماتے تھے. اب وقت تو ظاہر گزر گیا، لیکن کوئی حرج نہیں ہے ہم آج پڑھ لیں کل پڑھ لیں، اس لیے یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، اور اس میں ماہ مبارک رمضان توجہ کریں، اس دعا میں کیا ہے، इस दुआ में ये है कि हम इस माह मुबारक रमजान में खुदा की रहमतों और बरकतों का सवाल कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अजीज, जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज किया, ये दो दुआएं, एक कि वकाना मिन दुआई अलैहि सलाम इजा दखला शहर रमजान, कि आप सलामुल्लाह अलैहि की दुआ कि जब माह मुबारक रमजान शहर रमजान दाखिल होता था तो उस वक्त आप ये दुआ पढ़ा करते थे। और दूसरी दुआ है जिसको हम मौरिद गुफ्तगु करार देंगे अपने इन चंद रोजा गुफ्तगु के लिए, वो है विदाए शहर रमजान। कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम विदाए शहर रमजान के वक्त जो दुआ तिलावत फरमाया करते थे, तो ये भी बहरहाल हमारी कोशिश होगी। मुझे नहीं मालूम कि मैं इन दो दुआओं को अपने इस चंद रोजा गुफ्तगू में इसको कवर कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। इंशाल्लाह मुमकिन है, इसे तो बहुत बईद है कि दो चार दिन में मैं इस दुआ को खत्म कर दूं, फिर हम दूसरी दुआओं को देखेंगे जो माह मुबारक रमजान से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकती है। लेकिन बहरहाल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोशिश कीजिएगा कि अगर हो सके तो आप, अगरचे थक जाएंगे आप लोग और बिलखसूस थकावट दुगनी तिगनी हो जाएगी जब आप मेरे साथ साथ गुफ्तगू भी सुन रहे होंगे, कि मौलाना ने एक ख्वाहिश की थी कि गुफ्तगू के दरमियान सहीफ़ सज्जादिया को अपने साथ रखिएगा, तो मुमकिन है आप बाज़ औक़ात बाज़ अय्याम में ये देखें कि हमने सहीफ़ सज्जादिया से एक जुमला भी नहीं पढ़ा और आपके हाथ में सहीफ़ सज्जादिया ही खाली रह गई। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों की मैं माजरत चाहता हूँ इब्तदाई तौर पर कि मेरी गुफ्तगू की वजह से अगर आपको किसी तरह अगर अजियत या जहमत या मुश्किल हुई हो तो उसकी माजरत चाहता हूँ। आप सलामुल्लाह अलैह इस दुआ का आगाज करते हैं खुदा की हमद से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना हो लिहम्दिही। वाह, अजीब अंदाज है। इब्तिदा ही इस दुआ की एक खूबसूरत अंदाज, एक कमाल का अंदाज और एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहम्दिही, तमाम तारीफ उस खुदा की जिसने उसकी हमद की हिदायत दी। हमद भी उसी की और किस बात पर हमद, कि हमद करने की तौफीक अता की। खुदा का शुक्र, खुदा की हमद। देखिए एक चीज है खुदा का शुक्र अदा करना। अच्छा, आम तौर पर हमारे जहनों में शुक्र का माना वाजे है, शुक्र का मतलब अगर किसी को कहें कि शुक्र का ट्रांसलेशन करें तो शुक्र का ट्रांसलेशन ये कि किसी का थैंकफुल रहना, किसी की नेमतें, किसी की अताएं, किसी की इनायतों के ऊपर किसी का थैंकफुल होना, ये शुक्र कहलाता है। शुक्र यानी खुदा की, अब शुक्र खास, एक दफा आप आम इंसानों का शुक्रिया अदा करते हैं, गैर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, कि इसकी गुफ्तगू हम इस जेल में करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। किसकी गुफ्तगू, क्या गुफ्तगू, कि गैर खुदा के बारे में थैंकफुल रहना, गैर खुदा के बारे में शुक्रिया करना, इस पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करना यानी खुदा की दी हुई नेमतों पर खुदा का शुक्र अदा करना, वकलीलुम मिन इबादी अश्शकूर, अजीब आयत है वाकई ये, قلیل من عبادی، عجیب خدا کا ایک شکوہ ہے اپنے بندے سے، ایک شکوہ ہے اپنے بندے سے. کیا ہے شکوہ؟ کہ میرے انتہائی قلیل بندے شکر ادا کرتے ہیں. دنیا میں کتنے ہی خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، دنیا میں کتنے ہی خدا کو سجدہ کرنے والے ہیں، لیکن قرآن ان کو دیکھیں عبادت، یہاں پہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں ایڈ کر دوں کہ عبادت از ایکول ٹو شکر، عبادت در حقیقت خدا کا شکر ہے، اطاعت الہی در حقیقت خدا کا شکر ہے، اطاعت الہی در حقیقت خدا کا شکر ہے. کہ انشاءاللہ شکر کی اقسام کا اگر اشارہ، دیکھیں یہ وعدہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں شاید اخلاقی وعدہ، لیکن بہرحال وعدہ نہیں کر رہا ہوں، شہری وعدہ، کہ اگر موقع ملا تو شکر کی اقسام کو آگے خدمت میں شاید بیان کروں، لیکن شاید نہ بھی کروں، اس لیے کہ بہرحال گفتگو اس میں ہی کافی طویل ہے. بس شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر انسان خدا کا تھینکفل رہے، شکریہ ادا کرے. یہ ہے شکر کا معنی. حمد کس کو کہتے ہیں؟ روایتوں میں ہے کہ الحمد راس الشکر ہے، الحمد راس الشکر ہے. حمد کے لفظی معنی کیا ہے؟ حمد کے لفظی معنی ہے کسی کی آپ تعریف کریں، اور عام طور پر حمد صرف اور صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے. شکر انسان کے لیے بھی ہے اور خدا کے لیے بھی ہے، لیکن حمد صرف اور صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے، حمد صرف اور صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے. اب حمد اور شکر کا رشتہ کیا ہے؟ حمد اور شکر کا رشتہ کیا ہے آپس میں؟ کیوں جب شکر کی بات آتی ہے تو حمد کی بات آتی ہے، جب حمد کہتے تو ہم کہتے ہیں کہ شکر ادا کیا؟ اس لیے کہ شکر کا ایک طریقہ، شکر کا ایک طریقہ خدا کی حمد کے ذریعے سے ہے، خدا کی حمد کے ذریعے سے ہے. ہم سورہ فاتحہ، قرآن کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ توجہ کریں، قرآن کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی حمد سے. کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے حمد الہی، خدا کی حمد کرنا، خدا کا شکر ادا کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدوں سے کہے، الحمدوں کے ذریعے سے ہے. اور یہ جو الحمدوں میں جو الحمدوں کی جو جان ہے، الحمدوں کی جو اسٹرینتھ ہے، الحمدوں کی جو طاقت اور قدرت ہے، یہ بہرحال انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم الحمدوں کی اسٹرینتھ کو نہیں جانتے ہیں، الحمدوں کی قدرت کو نہیں جانتے ہیں کہ الحمدوں کی قدرت کیا ہے. لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک چیز ہے شکر، شکر یعنی کسی کا تھینک فل رہنا، کسی کا تھینکس ادا کرنا. اب وہ خدا کا ہے تو خدا کا شکر ادا کیا، ان شکرتم کا مزداد بن گیا. اور اگر غیر خدا کا اگر شکریہ ادا کیا ان کے دیے ہوئے احسانات کے اوپر، ان کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر، تو یہ خود ایک اجر عظیم ہے. اور خدا کی حمد اور خدا کا شکریہ اس سے کنیکٹڈ ہے، توجہ کیجیے گا، خدا کا شکر کنیکٹڈ ہے بندے کے شکر کے ساتھ. کہ یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کروں گا حدیث کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے اس کی وضاحت کروں گا. بس شکر واضح ہو گیا، حمد واضح ہو گئی کہ ہم کس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تعریف کو. روایت کا جملہ کیا ہے؟ روایت کا جملہ یہ ہے کہ الحمد راس الشکر ہے. راس کس کو کہتے ہیں؟ راس سر کو کہتے ہیں، یا حقیقت میں تو سر کو کہتے ہیں، چونکہ بدن میں سر کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے، कि अगर सर काट दिया जाए तो इंसान खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी क्या है? वो सर है, वो रास है। इसीलिए मसल रासुल इबादा जाहिर नमाज को कहा, असला तो रासुल इबादा, यानी तमाम इबादतों का सर नमाज है। तो आपने तवज्जो फरमाया कि रिवायत क्या बयान करती है? रिवायत बयान करती है कि खुदा की हम्द करना ये शुक्र का रास है। यानी शुक्र, एक दफा आप खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा तेरा शुक्र, ये शुक्र हो गया। बल्कि उलमाए कराम ये बयान करते हैं कि आप नमाज के बाद सजदे शुक्र कर दें, खाली सजदे शुक्र कर देना, ये खुदा का शुक्र अदा हो गया, ये खुदा का शुक्र अदा हो गया। और मैं अपने बच्चों और जवानों से बिलखुसूस मुखातब होकर कहता हूं कि नमाज के बाद के सजदे को, शुक्र के सजदे को तर्क ना करें। इसलिए कि रिवायत का जुमला है। अच्छा, ये बच्चों जवानों से इसलिए कह रहा हूं कि अब हम जैसे बूढ़े अफराद तो फारिग लोग हैं दुनिया के, तो वो उनके पास थोड़ा बहुत ताकीबात है नमाज, कम अज कम सजदे शुक्र का टाइम मिल जाता है। जवानों के पास फुर्सत कहाँ है? अभी उनको फेसबुक देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, ट्विटर देखना है, ये देखना है, वो देखना है। तो इसलिए इनसे ज्यादा मैंने खसूसी इल्तिमास की है कि सजदे शुक्र नमाज की कबूलियत है, नमाज की कबूलियत है। बल्कि रिवायत का जुमला यह है कि नमाज में अगर कोई चीज कमी रह जाए, नमाज में कमी से मुराद न कि कोई रुकू छोड़ दिया, कोई सजदा छोड़ दिया, कोई वाजिब छोड़ दिया, नहीं। अब ये तो मैं कुछ कह रहा हूं, ये आप लोग की नमाजों के बारे में कह रहा हूं, अपनी नमाज के बारे में नहीं कह रहा हूं। इसकी मेरी नमाज में कुछ नहीं है, सब कुछ ही छुटा हुआ है, सिर्फ एक जाहिरी ढांचा है, एक फिकी वाला फिकी वाली नमाज है। वरना जो असल नमाज है, रूह है नमाज है, जो फिकी नमाज के बगैर नहीं हो सकती है। फिकी नमाज बुनियाद है, वो वाजिबात बुनियाद है, किस तरह वुजू करना है, किस तरह नमाज पढ़नी है, किस तरह रुकू करना है, किस तरह सजदा करना है, बदन का सुकून की हालत में होना चाहिए, वो जो आदाब सलात है वाजिबात और मुस्तहबात की शक्ल में, वो तो जरूरी है। लेकिन उसके बाद कबूलियत के मकाम पर, कि इंशाल्लाह शायद मुमकिन है कबूलियत पर हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू हो, कबूलियत के मकाम पर अगर नमाज में कुछ कमी हो, तो ये मैंने कुछ अपने लिए कहा कि मेरी कुछ कमी नहीं है बल्कि पूरी की पूरी कमी है, तो सजदा बाद अज नमाज, नमाज के बाद का सजदा, ये उस कुछ कुछ को नहीं, उस कमी को पूरा करता है। रिवायत का जुमला है। बस तवज्जो किया आपने, क्या कह रहा था मैं आपकी खिदमत में कि शुक्र मुख्तलिफ तरीकों से होता है, शुक्र मुख्तलिफ तरीकों से होता है, लेकिन शुक्र में सबसे स्ट्रांग पार्ट शुक्र का क्या है, सबसे मजबूत शुक्र का तरीका क्या है? वो है खुदा की हम्द करना। और ये जो सूरह फातिहा में, सूरह फातिहा सूरह हम्द में जो आगाज हम्द है वो क्या है? वो ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वहां पर उलमाए कराम मुफस्सरीन ने ये बात, ये नुक्ता बयान किया है। देखिए हम्द आपकी खिदमत में अर्ज किया, जाहिरन ये नुक्ता भी बयान है कि हम सिवाय खुदा की किसी की नहीं हो सकती है। हम्द का मतलब क्या होता है? हम्द का मतलब ये होता है कि किसी की तारीफ करें आप। हम्द का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करें। आपको कोई चीज खूबसूरत नजर आई, आप उसकी तारीफ करें, इसको लुगवी एतबार से हम्द कहते हैं। यानी किसी चीज की पॉजिटिविटी को अगर आप देखते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी को देखने के बाद उसकी तारीफ करें, इसको हम्द कहते हैं। फूल, परफ्यूम, मंजर वगैरह वगैरह, ये सब जब आपने किसी की खूबसूरती को देखा, किसी की अच्छाई को देखा, किसी के अच्छे अमल को देखा, किसी के अच्छे अखलाक को देखा, तो ये सब का सब क्या है? इसको लुगत के एतबार से कहते हैं हम्द, तारीफ करना यानी हम्द करना। اب توجہ کریں، قرآن کا آغاز کس سے ہے؟ قرآن کا آغاز ہے الحمدللہ کے ذریعے سے، الحمدللہ کے ذریعے سے. اب الحمدللہ کے ذریعے سے الحمدللہ کی خصوصیت ہے، حمد ہے، حمد کے اوپر الف اور لام اٹیچ کیا ہوا ہے، حمد کے ساتھ الف اور لام کو اٹیچ کیا ہوا ہے. یہ جو الف لام ہے، اس الف لام کی میننگ کیا ہے؟ اس الف لام، یہ الف لام کو عربی میں کہتے ہیں استغراق، استغراق یعنی ایک چیز کسی چیز کو گھیر لے پورے طریقے سے. یہ الف لام اس معنی کے لیے آتا ہے. الحمدللہ یعنی ساری کی ساری حمد خدا کے لیے ہے. کیا مطلب ساری کی ساری حمد خدا کے لیے؟ دیکھیں جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، مثال کے طور ایک پھول ہے، ایک پھول ہے اور وہ پھول خوشبو ہے، اچھی خوشبو ہے، خوش منظر ہے، خوشبو ہے اور خوش منظر ہے، تو آپ نے اس کی تعریف کی. لیکن کیا تمام کے تمام خوبصورت مناظر اس پھول میں جمع ہو گئے؟ نہیں. تمام کے تمام اعلی درجے کی خوشبو کیا اس پھول میں جمع ہو گئی؟ نہیں. جنت کی خوشبو تو ہم نے نہیں سونگی ہے، جنت کا منظر تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جنت کے پھولوں کو تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جنت کی خوبصورتی تو ہم نے نہیں دیکھی ہے، اور دنیا کی بہت ساری خوبصورتیوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو ہم کیسے پھول کی ساری حمد کر سکتے ہیں؟ ساری حمد کا مطلب کیا ہے؟ ساری حمد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام کے تمام کمالات موجود ہیں. پھول میں سارے کمالات تو نہیں ہیں، مگر پھول صاحب عقل ہے. یہ پھول کی کمی ہے، یہ پھول کا نقص ہے، یہ پھول کا عیب ہے. لہذا پھول کی ساری ہم نہیں ہو سکتی ہے، پرفیوم کی ساری ہم نہیں ہو سکتی ہے. مخلوقات الہی ممکن الوجود کی ساری ہم نہیں ہو سکتی ہے. ساری کی ساری حمد کس کے لیے ہے؟ لفظ نہیں، معذرت کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. یہ جو اللہ ہے نا، اللہ کا لفظ، اس اللہ کے لفظ کی بھی خصوصیت ہے. اس اللہ کے لفظ کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ لفظ اللہ کا مطلب ہے مستجمع لجمیع صفات الحمیدہ، صفات الحسنہ. خود ہے یہ لفظ، ایک تو ہے خدا کی ذات، ایک ہے یہ لفظ. یہ لفظ اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے. اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ یہ تو ایک لفظ ہے نا، کیا اگر کہ اس کا اثر شرعی ہے کہ اس کو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے ہیں، اس کا احترام ہے، بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے ہیں. لیکن اس لفظ کا الف لام لام ہے اللہ، یعنی وہ ذات کہ جس میں تمام کی تمام صفات حسنہ و حمیدہ شامل ہے، جو ذات کے جس میں ساری کی ساری صفات حسنہ اور حمیدہ شامل ہو جائیں تو ساری کی ساری حمد بھی اسی کے لیے مخصوص ہے، ساری کی ساری حمد بھی اسی کے لیے مخصوص ہے. واضح؟ ساری کی ساری حمد صرف اور صرف اس ذات کو شامل ہو سکتی جس میں تمام کی تمام پوزیٹیوٹی ہو. ہم ہمارے اطراف میں یا جتنے بھی ممکن الوجود ہیں، ان کے کمالات کا ایک اینڈ ہے، ایک حد ہے، ایک لمیٹیشن ہے. کم از کم جو ایک لمیٹیشن ہے وہ یہ کہ وہ مخلوق خدا ہے، یہ ایک لمیٹیشن ہے. وہ صرف خدا کی ذات ہے جو لامحدود ہے، جو انلمیٹڈ ہے ہر اعتبار سے. جب ساری کی ساری صفات حسن اس کے اندر موجود ہیں تو پھر ساری کی ساری ہم کس کے لیے؟ صرف خدا کی ذات کے لیے، صرف خدا کی ذات کے لیے. بس اب توجہ کریں حمد کا مطلب کیا ہو گیا؟ کسی کی ثنا، کسی کی حمد کرنا. شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہے کسی کی تعریف کرنا، کسی کی تعریف کرنا. خوب سوال، आप जब किसी की हमद कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? आप उसके ऐबों की हमद कर रहे हैं या उसकी अच्छाइयों की तारीफ कर रहे हैं? हम उसकी अच्छाइयों की तारीफ कर रहे हैं। उनकी अच्छा उसकी अच्छाइयों से एक अच्छाई यह है कि उसने अपने बंदों को नेमत दी, उसने अपने बंदों को पाला, क्योंकि वो खालिक है, वो मालिक है। खालिकियत, मालिकियत और रुबूबियत का तकाजा यह है कि वो अपने बंदे को पाले। लिहाजा उस खुदा ने इस अजीम काम को अंजाम दिया, लिहाजा उसके हम अंजाम देते हैं। और हम रिवायत में क्या बयान किया कि शुक्र, तवज्जो करें, यानी शुक्र का अगर आपको आला तरीन, अब आला तरीन शुक्र किसको कहते हैं वो अगर मौका मिला तो शायद आपकी खिदमत में अर्ज करूं, क्योंकि शुक्र पर मैंने पिछले साल माह शाबान में जारन आपकी खिदमत में गुफ्तगू की थी। मैं इसलिए ज्यादा शुक्र के मसले को नहीं उठाना चाह रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो बातें लेकर आऊं कि जो इस साल नई बातें हों। तवज्जो करें कि शुक्र क्या है। शुक्र, हक के शुक्र किस तरह अदा हो सकता है, हक के शुक्र किस तरह अदा हो सकता है, ये इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो शायद आपकी खिदमत में बयान करूं। लेकिन बहरहाल आपकी खिदमत में पहले बयान कर चुका हूं गुज़िश्ता सालों में, इसको मैं तकरार नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ आखिरी जुमला आज की हद तक, आखिरी यानी चंद जुमले, के अलहम्द की स्ट्रेंथ क्या है, अलहम की ताकत क्या है, अलहम की कुदरत क्या है। मासूम या पांचवें इमाम या छठे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब आपका दाब्बा, आपकी सवारी गुम हो गई, आपने कहा कि मुझे जब सवारी मिल जाएगी तो मैं खुदा का कमा हक्कहू शुक्र अदा करूंगा, मुकम्मल शुक्र अदा करूंगा। इमाम की सवारी थोड़ी देर बाद मिल गई, इमाम की सवारी मिल गई, इमाम अलैहिस्सलाम ने जुमला अपनी जबान से अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब रावी समझ रहा था कि शायद आप कोई खुतबा इरशाद फरमाएंगे, आप शायद एक कुरान की एक सूरा पढ़ेंगे और खुदा की औसाफ बयान करेंगे। रावी ने एक मरतबा सवाल किया, यबना रसूलुल्लाह, आपने कहा कि कमा हक्कहू मैं खुदा का शुक्र अदा करूंगा, तो इमाम ने कहा नहीं देखा तुमने कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए से खुदा की तारीफ की है। यह है अल्हम्दुलिल्लाह की स्ट्रेंथ, यह है अल्हम्दुलिल्लाह की जामियत, यह है अल्हम्दुलिल्लाह की ताकत और कुदरत के खुदा की पूरी पूरे शुक्र को कबूल करती है। अगरचे कमा हक्कहू शुक्र किसको कहते हैं इंशाल्लाह बाद में बयान करेंगे इंशाल्लाह अजीज, अगर मौका मिला तो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि हम पिछले साल में ये बयान कर चुके, इसलिए बयान करने की जरूरत नहीं, लेकिन शायद इशारा था आपकी खिदमत में बयान कर दें, बस तवज्जो फरमाए आपने कि यह है स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह की। लिहाजा अगर हम सजदे शुक्र करते हैं तो उलमाए कराम ने वहां पर बयान किया, रिवायतों में बयान हुआ है क्या कि इंसान सजदे में जाए और कहे अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा भी कहे, तीन दफा कहे, शुक्र अदा हो गया, सजदे शुक्र अदा हो गया। और नमाज के बाद का सजदा, नमाज के बाद का सजदा, शेख तूसी जहन रिवायत बयान करते हैं या शेख तूसी का कलाम है कि सजदा शुक्र ये वाजिब वाजिब वाजिबतुन अल्लाह कुल मुस्लिम, सजदा शुक्र हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है, इसलिए कि नमाज खुद एक नेमत है, नमाज खुद एक नेमत है। अब यहां ये जुमला तवज्जो करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहम्दिही। देखिए खुदा इफ्तार देता है ये भी नेमत है, पेट भरता है ये भी नेमत है, प्यास बुझाता है ये भी नेमत है, लिबास देता है तो जरूरी है कि शुक्र करें। अगर चाहते हैं कि ये नेमतें हमेशा हमारे साथ रहें, नहीं बल्कि एक बढ़कर जुमला कहूं कि अगर हम चाहते हैं कि ये नेमतें ज्यादा होकर हमारे पास आए तो खुदा का शुक्र अदा करें। मशहूर मारूफ कुरान की आयत है इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, ये खुदा का कुरानी वादा है, कुरानी वादा है, इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारे नेमतों में इजाफा करूंगा, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा। तो ये सारी नेमतें हैं, लेकिन जो अहम तरीन नेमत है कि खुदा अता की, यानी खुदा ने हमें तौफीक दी, खुदा ने हमें ये मौका फराहम किया, खुदा ने ये शऊर दिया, खुदा ने ये सेंस दिया, खुदा ने ये तवज्जो दी, खुदा ने ये तवज्जो दी। अगर खुदा की तवज्जो ना होती, अगर खुदा की तवज्जो ना होती तो कैसे मुमकिन था, कैसे पॉसिबल था, पॉसिबल था खुदा की इंसान हम करें? इन्ना हदे ना हो इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। पहले मरल पे खुदा ने हिदायत दी है, पहले मरल पे खुदा ने हिदायत दी है। बस ये आपने दो जुमले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहम्दिही व जालना मिन अहलिही अहल, यानी साहिबान हम्द, हमें उन लोगों में शुमार किया जो खुदा की हम्द करने वाले हैं। क्यों, इसको इंशाल्लाह कल बयान करेंगे, लेकिन आपने मुलाहिजा फरमाया, ये है खुदा की हम्द, ये है खुदा का शुक्र। और खुदा का शुक्र है कि हम आले मोहम्मद के मानने वाले हैं। वाकई इतनी बड़ी नेमत से खुदा ने नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्किना बिविलायते अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ईद गदीर की वो 100 मरतबा की तस्बीह कि खुदा की इस दी हुई अजीम नेमत के ऊपर इंसान खुदा की हम करता है। खुदावंद मुताल ने आले मोहम्मद की मोहब्बत को हमारे दिल में करार दिया। और जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद और जिक्र हुसैन की तौफीक अता की है। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं, इन आंसुओं की कदर करें जो हुसैन के गम में बहने वाले हैं। खुदा से दुआ करें, दुआ का महीना है ना, खुदा से दुआ करें कि खुदाया हमारी आंखों में गम हुसैन से बहने वाले आंसू अता फरमा। ये वो खुदा की नेमत है, ये वो खुदा की हमद है, इसलिए कि इसकी कद्रो कीमत क्या है। इसकी कद्रो कीमत यह है कि मेरा और आपका छठा इमाम ये कहता है, जिस पर जिसके सामने हमारी मजलूमियत का तस्करा हो, हमारी गुर्बत का तस्करा हो। देखिए, एक तरफ तो सईद शौदा मौला हुसैन की बात है, एक तरफ जमी अहले बैत अथार, तमाम अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम अहले बैत में से अगर किसी का तस्करा हो तो उसका अजर और सवाब बयान किया जा रहा है। तो अगर कोई हुसैन की मुसीबत पे गिरिया करे कि इमाम रजा के बकौल कि ए इब्ने शबीब इन कुंत बाकी लशैन फअबकी लिलहुसैन अलैहिस्सलाम, ए इब्ने शबीब अगर किसी चीज पर रोने का जी चाहे तो मेरे जद हुसैन पर क्रिया करो। तो ये आंसू क्या है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी की आंखों में अगर मच्छर के पर के बराबर भी अगर आंसू आ जाते हैं, ये महीना मगफिरत का महीना है, ये महीना तौबा का महीना है। हम क्या तौबा करें, हम क्या मगफिरत करें, हम क्या इस्तगफार करें, हमारी जबान में ना ताकत है, ना हमारे दिल में वो ताकत है, ना हमारे रूह में वो ताकत है। बस हमारे पास तो फकत जिक्र हुसैन है, और जिक्र हुसैन में भी अगर हुसैन की प्यास याद आ जाए, अगर अहले बैत अथार मुस्लिम की प्यास याद आ जाए, अगर अब्बास अलम की कुर्बानी याद आ जाए, अगर हुसैन की मजलूमियत और हुसैन की गुर्बत याद आ जाए, अगर हुसैन की तन्हाई याद आ जाए, अगर हुसैन की तन्हाई याद आ जाए और आंखों पे अगर आंसू आ जाए, तो बस खुदा की हम करें, खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदावंदे मुताल ने हमारे इस्तगफार और हमारी तौबा के लिए सबब को मुहैया किया, सबब को फराहम किया। बस आलम बस कर आशूर का दिन है, आलम महशर है, आलम महशर है, और हुसैन की गुर्बत है, हुसैन की गुर्बत है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं हुसैन किस गुर्बत को पढ़ूं, मैं हुसैन की किस मजलूमियत को पढ़ूं। आया उस मजलूमियत को पढ़ूं कि जब हुसैन अपने जवान बेटे की लाशे पर पहुंचे और अकबर का जनाजा सामने पड़ा है। हाय, रिवायत का जुमला है, रिवायत का जुमला है। बड़ी बड़ी मुसीबतें हुसैन ने झेली है, बड़ी बड़ी मुसीबतें करबला के मैदान में देखी है। मुझे नहीं मालूम कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी, लेकिन बाज रिवायतों से पता चलता है कि हुसैन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अकबर की मुसीबत थी। तभी मक्तल का एक जुमला है, जब लुटा हुआ कारवार एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा ना, अज़ादारो जरा ज़हन में तसव्वुर करें, माफ कर दिएगा, लेकिन बस एक दफा जो हो सके थोड़ा सा तसव्वुर कर लीजिएगा कि शराबी का मजमा है, शराबियों का मजमा है, ज़ालिमीन और ग़ासिबीन तख्ते रसूल पर बैठे हुए हैं। एक मर्तबा अहले कारवार को असीर, खानदान अहले बैत अथारम के असीर को लाया जा रहा है। मकातिल का जुमला है कि जब ज़ैनब कुबरा, जनाब ज़ैनब कुबरा इब्ने ज़ियाद के दरबार में जा रही है, हाथ तो पसे गर्दन बंधे हुए हैं, अपने चेहरे से, अपने चेहरे को, अरे अपने आस्तीनों से छुपाया हुआ है। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद तख्त पर बैठा है, सामने तख्त पर सरे हुसैन रखा है। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद की निगाह सरे हुसैन पर पड़ी, अरे हुसैन की गुर्बत को जरा देखिए, हुसैन की मजलूमियत को जरा देखिए। एक दफा इब्ने ज़ियाद ने ये कहा, ए हुसैन तू इतना बूढ़ा तो ना था, तू इतना ज़ईफ तो ना था, तू इतना बूढ़ा तो ना था, बस ये सुनना था। एक मर्तबा अली की शेर दिल बेटी, अभी तक तो अपने चेहरे को छुपाए हुए, अभी तक तो एक तहकीर के साथ, मजलूमियत के साथ दरबार में लाई जा रही, लेकिन जब ये हुसैन की गुर्बत की बात आई, एक मर्तबा तड़प कर इब्ने ज़ियाद से जलाल में मुखातब होकर कहा, ए इब्ने ज़ियाद मेरा भाई बूढ़ा ना था, बल्कि अकबर की मौत ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया। وصلى الله عليك يا ابا عبد الله وصلى الله عليك يا ابا عبد الله وصلى الله عليك يا ابا عبد الله خداوند تو یہ واسطہ دے دے محمد و آل محمد کا واسطہ ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما خداوند تو یہ واسطہ دے دے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو مومن و مومنات حاضر مجلس مومن و مومنات اور دنیا بھر میں جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار ہیں بچوں کی تعلیم بچوں کی شادی گھریلو مسائل دفتری مسائل خداوند یہ واسطہ دے دے اس عظیم مہینے کا واسطہ خداوند تمام مومن و مومنات کو تمام مشکلات اور بلاؤں سے آزادی عطا فرما خداوند یہ واسطہ دے دے محمد و آل محمد کا یہ ماہ مبارک رحمت ماہ مبارک مغفرت ہے خداوند اس مہینے میں ہمیں تمام رحمتوں اور مغفرتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما خداوند اس مہینے میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما خداوند اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما خداوند اس مہینے میں واجبات کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما خداوند ہمیں تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما خداوند اس مہینے میں ہمیں غریبوں اور فقیروں یتیموں اور مسکینوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما خداوندہ اس مہینے میں ہمیں گناہوں سے معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومن و اناد حج و زیارات کے مشتاق ہیں بالخصوص زیارت سید الشہداء کے خداوندہ تمام مومن و اناد کو اپنے گھر و اہل بیت اطہار المسلم کی زیارت نصیب فرما خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین کل محروم مومن و مومنات اور جو محروم مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں خداوند تمام محروم مومن و مومنات کی مغفرت فرما جوار معصومین میں جگہ عطا فرما جن مومن و مومنات نے دعائے صحت کے لیے کہا ہے خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ حاضر مجلس مومن و مومنات کے متعلقین یا ان میں جو موجود ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعان امیر المومنین سلام اللہ علیہ بیمار ہے خداوند بحق محمد و آل محمد انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما خداوندہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا زمانے کا امام ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے اور خصوصی طور پر دعائے صحت ہے تمام ان مومن و مومنات کے لیے جو کووڈ 19 میں مبتلا ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں کووڈ 19 میں مبتلا ہے یا کسی بھی مرض میں مبتلا ہے خداوندہ بحق محمد و آل محمد خداوندہ تو یہ تجھے سید سجاد کی غربت و بیماری کا واسطہ دیتے ہیں مظلومیت کا واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں خداوندہ تمام مومن و مومنات کو اس بلا سے اور تمام بلاؤں تمام مرض اور تمام بیماریوں سے رہائی عطا فرما ایک سورہ فاتحہ کی التجا سے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے کل مرحوم مومن و مومنات کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی التجا سے মৌলানা সৈয়দ হাশিম রেজা জাফরি সাহেব, মৌলানা ইবনে নজফি সাহেব, উস্তাদ সিপ্তে জাফর, কুল মুমিনুনাত উলমায়ে কেরাম ও শোহাদায়ে কেরাম কে লিয়ে সূরা ফাতিহা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াওমিদ্দিন, ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রি মাগদুবি আলাইহিম ওয়াদ-দাল্লিন। بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.